सबक देखिए भाई आगे, वमन قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يؤخذ منه إذا عتق وأصله أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى. گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ نے کفار کے مہر کے بارے میں چند مسائل ذکر فرمائے تھے. ایک صورت یہ ذکر فرمائی کہ اگر کوئی ذمی کسی ذمیہ کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے دارالاسلام میں غیر مہر پر، یعنی مہر کو ذکر نہیں کیا یا مہر کی نفی کر دی، یا مردار پر نکاح کر لیا جو کہ کسی کے نزدیک بھی مال نہیں، اور یہ ان کے دین میں بھی جائز ہو کہ بغیر مہر کے بھی نکاح ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد جب خاوند اس کو طلاق دے گا، چاہے صحبت سے پہلے طلاق دے، چاہے صحبت کے بعد طلاق دے، یا چاہے خاوند اس کو چھوڑ کر مرے، یعنی خاوند کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہے، کسی بھی صورت میں بیوی کو مہر یا متعہ وغیرہ نہیں ملے گا. یعنی امام صاحب کے نزدیک ذمیوں کے ساتھ دارالاسلام میں بھی ان کے عقیدے کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا. تو ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو گیا یا یہ دونوں ویسے ہی اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے آئے اور مہر مقرر نہیں کیا تھا اور یہ ان کے دین میں جائز تھا، تو قاضی انہی کے عقیدے کے مطابق فیصلہ کرے گا اور عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور نیز حربیوں کے اندر بھی مسئلہ اسی طرح ہے. جب دارالاسلام کے ذمیوں کے اندر مسئلہ اس طرح ہے تو دارالحرب کے حربیوں کے اندر بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ حربیوں کے اندر تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ عورت کے لیے کچھ بھی مہر یا متع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ذمی وہ تو دارالاسلام میں رہتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے قوانین ماننے کا التزام کیا ہے اپنے اوپر، اور نیز ہمارے پاس ولایت الزام بھی ہے کیونکہ حکومت ہماری ہے، تو لہذا ذمی جو ہیں یہاں پر مملکت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق یہاں فیصلہ ہوگا، اور مملکت اسلامیہ کے اندر تو کوئی نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا، لہذا اس عورت کو یا تو مہر مثل ملے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو متعا ملے گا. جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے ذمی ہو چاہے حربی ہو، ہر صورت میں قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ عورت کو مہر مثل ملے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو متعا ملے گا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے احکام عام ہیں، حضور علیہ السلام کو سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، لہذا یہ سب حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور یہ شریعت کے قوانین ان پر بھی لاگو ہوں گے. لہذا ذمی ہوں یا حربی ہوں، قاضی کے پاس اگر ان کا مقدمہ آئے تو قاضی شریعت اسلامی کے مطابق عورت کے لیے مہر مثل کا یا متع کا فیصلہ کرے گا. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ذمیوں سے بھی ان کے عقیدے کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا اور قاضی ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر ان کے مذہب کے مطابق بغیر مہر کے نکاح جائز ہے تو قاضی بھی یہی فیصلہ کرے گا. وجہ یہ کہ ذمیوں نے دین کے اندر اور نیز وہ معاملات جن میں وہ ہمارے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان معاملات کے اندر ہمارے قوانین کا اپنے اوپر التزام نہیں کیا بھائی، اور نیز ہمیں ولایت الزام بھی ان پر حاصل نہیں ہے، کیونکہ ولایت الزام تو تلوار کے ذریعے ہوتی ہے یا بحث و مباحثے کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے کیونکہ ذمیوں کے ساتھ ہم نے عقد ذمہ کیا ہوا ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، لہذا نہ تو تلوار کے ساتھ زبردستی ان پر یہ چیزیں لاگو کی جائیں گی اور نہ بحث و مباحثے کے ذریعے. تو جب نہ ان کے لیے التزام ہے है और न उन पर इल्जाम हो सकता है, तो लिहाजा उनके साथ उनके अकीदे के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। और उनके अकीदे के मुताबिक तो बगैर महर के भी निकाह जायज है, तो फिर औरत के लिए महर या मुता कुछ भी नहीं होगा। तो ये जिम्मी भी हर्बियों की तरह हो गए, जैसे हर्बियों ने हमारे कवानीन को मानने का इल्तिजाम भी नहीं किया और वहां पर हमारे लिए विलायत इल्जाम भी नहीं, क्योंकि वहां हमारे हाकिम की हकूमत नहीं है। तो ये जिम्मी भी किसकी तरह हो गए? हर्बियों की तरह। और हर्बियों में तो आप भी तस्लीम करते हैं ऐ साहिबैन कि वहां औरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां पर भी जिम्मियों का भी मसाला उसी तरह होगा। औरत अगर काजी के पास ये मसाला ले आई तो औरत के लिए कोई महर या मुता वगैरह नहीं होगा भाई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने एक और मसाला जिक्र फरमाया कि एक जिम्मी ने जिम्मिया के साथ निकाह कर लिया किसी मुअय्यन शराब पर या मुअय्यन खिंजीरों पर, और फिर उन पर कब्जा करने से पहले ये दोनों मुसलमान हो गए या दोनों में से कोई एक मुसलमान हो गया, तो भी इमाम साहब फरमाते हैं उस जिम्मिया औरत के लिए वही मुअय्यन शराब या वही मुअय्यन खिंजीर होंगे, यही उसको मिलेंगे भाई। और अगर शराब और खिंजीर गैर मुअय्यन हुए जिन पर निकाह किया है, तो इस सूरत में शराब की तो कीमत देंगे, जबकि खिंजीर के अंदर फिर महरे मिसल आएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि मुअय्यन और गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर का एक ही हुक्म है, अलबत्ता आपस में साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शराब और खिंजीर चाहे मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन एक ही हुक्म होगा और महरे मिसल आएगा, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शराब और खिंजीर मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन एक ही हुक्म होगा और दोनों सूरतों में उस शराब या खिंजीर की कीमत देना पड़ेगी। उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने इनकी दलील जिक्र फरमाई और वहां मैंने आपको एक दो बातें तमहीद के तौर पर बतलाई थी कि याद रखो बेअ के अंदर मबीए के अंदर कबलल कबज तसरुफ जायज नहीं, अलबत्ता समन के अंदर कबलल कबज भी तसरुफ जायज है। हां, मुश्तरी जब मबीए पर कब्जा कर लेगा फिर उसके लिए मबीए में भी तसरुफ जायज है। तो लिहाजा यहां बेअ के अंदर कब्जे की मुशाबहत आ गई आकद के साथ, क्योंकि आकद की वजह से मिल के ऐन आती है, मुश्तरी उस चीज की ऐन यानी जात का ही मालिक बन जाता है, और जब उस पर कब्जा कर लेगा तो मिलके तसर्रुफ भी उसको हासिल हो जाएगी, अब वो उसमें तसर्रुफ भी कर सकता है। तो जैसे आकद की वजह से मिल के ऐन आई यानी एक ऐसी चीज आई जो पहले नहीं थी, इसी तरह कब्जे की वजह से भी मिलके तसर्रुफ आ गई यानी एक ऐसी चीज जो पहले नहीं थी, तो कब्जा मुशाबे हो गया हकद के। कब्जा किसके मुशाबे हुआ? अकद के मुशाबे हो गया। बात समझ में आ गई? ये मुअय्यन शराब और मुअय्यन खिंजीर की बात चल रही है, तो कब्जा जो है अकद के मुशाबे हो गया, और शराब और खिंजीर पर तो इस्लाम ने अकद से मना किया है, जब अकद से मना किया है तो कब्जे से भी मना किया है, इसलिए क्योंकि कब्जा भी अकद के मुशाबे है भाई। और नीज मैंने आपको बतलाया था कि अगर गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर पर अकद किया जाए तो जिस वक्त औरत इस गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर पर कब्जा करेगी उसी वक्त वो मालिक भी बनेगी और उसी वक्त उसको तसर्रुफ का हक भी मिलेगा। तो गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर में तो बिल इत्तेफाक औरत इन पर कब्जा कर ही नहीं सकती जब दोनों मुसलमान हो जाएं या दोनों में से एक मुसलमान हो जाए, इसलिए क्योंकि इस सूरत में अगर दोनों मुसलमान हुए हैं तो शराब और खिंजीर का न तमल्लुक जायज है न तमलीक जायज है। औरत अगर इन पर कब्जा करेगी किसमें? गैर मुअय्यन। औरत कब्जा करेगी तो खावंद की तरफ से तमलीक लाजिम आएगी और औरत की तरफ से तमल्लुक यानी मालिक बनना लाजिम आएगा, और ये दोनों तो मना है शरीयत इस्लामिया में। और अगर दोनों में से एक मुसलमान हुआ है, मसलन औरत मुसलमान हुई है, तो इस सूरत में अगर वो गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर पर कब्जा करेगी तो उस वक्त तमल्लुक लाजिम आएगा और तमल्लुक भी मना है, और अगर सिर्फ खावंद मुसलमान हुआ है तो खावंद की तरफ से तमलीक लाजिम आएगी और तमलीक भी मना है। तो मालूम हुआ गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर पर औरत कब्जा कर ही नहीं सकती जब दोनों मुसलमान हो जाए या दोनों में से एक मुसलमान हो जाए, तो गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर पर औरत कब्जा नहीं कर सकती। और मुआयन के अंदर भी हमने बतला दिया था कि उसके अंदर भी औरत कब्जा नहीं कर सकती क्योंकि उस कब्जे की मुशाबहत है किसके साथ, आकद के साथ। तो लिहाजा मुआयन और गैर मुआयन दोनों का एक ही हुक्म हो गया, दोनों में से किसी एक पर भी औरत के लिए कब्जा जायज नहीं है, तो दोनों का एक जैसा हुक्म हो गया। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इस्लाम की हालत में ये दोनों मियां बीवी आकद करते और शराब या खिंजीर पर आकद करते, चाहे वो मुआयन होते चाहे गैर मुआयन, तो उस सूरत में महर मिसल ने आना था, तो यहां भी दोनों सूरतों में महर मिसल आएगा, चाहे शराब और खिंजीर मुआयन हो चाहे गैर मुआयन। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर दोनों ने जिम्मी होने की हालत में निकाह किया है और इन जिम्मियों के नजदीक तो शराब और खिंजीर माल हैं, लिहाजा मुसम्मा तो ठीक हुआ, यानी वो मुकर्ररा महर तो उनके मजहब के मुताबिक ठीक हुआ, लेकिन अब दोनों में से एक मुसलमान हो चुका है या दोनों मुसलमान हो चुके हैं, अब खावंद अदायगी से आजिज आ गया, क्योंकि अदायगी करेगा तो तमलीक या तमल्लुक लाजिम आएगा और वो तो जायज नहीं। और जब खावन मुकर्ररा महर की अदायगी से आजीज आ जाए तो वहां बिल इत्तेफाक कीमत आया करती है। जैसे किसी शख्स ने एक औरत से निकाह किया और कहा ये जो मेरा गुलाम है ये मैं तुम्हें बतौर महर के दूंगा, चुनाचे निकाह हो गया, बाद में भी खावन ने यह गुलाम औरत के हवाले नहीं किया था कि उससे पहले ही गुलाम का इंतकाल हो गया, तो देखो खावन महर मुसम्मा को हवाले करने से आजीज आ गया और इस सूरत में बिल इत्तेफाक खावन को अब इस गुलाम की कीमत देना पड़ेगी। तो यहां पर भी खमर या खिंजीर पर निकाह किया है और दोनों मुसलमान हुए या दोनों में से एक मुसलमान हुआ तो उस खमर या खिंजीर की अदायगी मुतअज़्ज़िर हो गई, खावंद उसकी अदायगी से आजिज आ गया, तो अब इस सूरत में उसको इनकी कीमत देना पड़ेगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, मबीए और महर का मामला एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मबीए के अंदर आकद से सिर्फ मिल्कियत आती है और कब्जे से तसर्रुफ आता है, लेकिन महर के मामले में जब महर मुआयन पर निकाह किया जाता है तो आकद करते ही औरत उस महर मुआयन की मालिकन भी बन जाती है और साथ ही उसको हक तसर्रुफ भी मिल जाता है। बैअ में तो हक तसर्रुफ कब्जे के बाद मिलता था, लेकिन महर मुआयन के अंदर आकद होते ही औरत को मिलके तसर्रुफ भी हासिल हो गई। अब सिर्फ खावंद के कब्जे में है वो मुअय्यन शराब या खिंजीर, बाकी मालिक भी औरत है और तसर्रुफ का हक भी औरत को है, तो लिहाजा जब खावंद उसके हवाले करेगा तो खावंद के जमान से वो चीज निकलकर औरत के जमान में आ जाएगी, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, यानी सिर्फ कब्जा बदलेगा, बाकी मिल्कियत और तसर्रुफ तो पहले से ही औरत के लिए साबित है। और सिर्फ कब्जा बदलना यह तो शरीयत इस्लामिया के अंदर मुमतनेअ नहीं है। जैसे कोई शख्स किसी जिम्मी की शराब गसब कर ले और फिर वो जिम्मी मुसलमान हो गया तो अब भी इसको हक हासिल है, ये अपनी शराब उस शख्स से वापस ले सकता है। तो देखो यहां पर भी उस शख्स के कब्जे से शराब निकलेगी और उस जिम्मी जो अब मुसलमान हो चुका है उसके कब्जे में आ जाएगी और शरीयत में इसकी कोई मुमानात नहीं है, इसीलिए तो उसको वापस लेने का हक है इस जो ये जिम्मी जो मुसलमान हो गया है। अगर कब्जा ही जायज ना होता तो इसके लिए वो गसब शुदा शराब वापस लेना भी जायज ना होता। तो मालूम हुआ कि मुअय्यन शराब और खिंजीर के अंदर वही शराब या खिंजीर औरत को मिलेगी क्योंकि वो पहले से उसकी मालिक भी बन चुकी है और साहिब तसर्रुफ भी बन चुकी है। जबकि गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर के अंदर तो कब्जा मुमकिन ही नहीं है, इसलिए क्योंकि औरत कब्जा करेगी तो उसी वक्त मालिकन भी बनेगी और उसी वक्त साहिबे तसर्रुफ भी बनेगी भाई, लिहाजा उस पर तो कब्जा नहीं हो सकता। तो लिहाजा जब वहां पर कब्जा मुतअज़्ज़िर हो गया, औरत गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर पर कब्जा नहीं कर सकती, तो फिर हमने कहा अगर खिंजीर महर मुकर्रर किया था तो फिर महर मिसल देना पड़ेगा, खिंजीर की कीमत भी नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि खिंजीर ज़वातुल क़ियम में से है और ज़वातुल क़ियम के अंदर कीमत देना इसी तरह है गोया ऐन वही शय दे रहा है, तो लिहाजा खिंजीर में कीमत भी नहीं दे सकता बल्कि महरे मिसल देना पड़ेगा, जबकि शराब के अंदर, शराब तो मिसलियात में से है और मिसलियात के अंदर अगर किसी के जिम्मे मिसलियात हो तो उसका मिसल देना पड़ता है, लेकिन यहां तो शराब है, इसका मिसल तो शराब ही है, वो तो नहीं दे सकते, तो फिर उसकी कीमत देंगे। और मिसलियात की कीमत ये ऐन मिसली देना नहीं है, बल्कि ये उसका बदल दे रहा है, और शराब का बदल देना तो मुसलमान के लिए जायज है, शराब देना तो जायज नहीं लेकिन उसका बदल देना तो जायज है भाई। और फिर साहिबे हिदाया ने यह भी बताया कि अगर खावंद ने सोहबत से पहले बीवी को तलाक दे दी तो फिर इस सूरत में जिन अइमा ने महरे मिसल को वाजिब किया है तो उन सूरतों में औरत को मुता मिलेगा भाई, मुतातु तलाक को तीन कपड़े मिलेंगे, और जिन अइमा ने जिन मसलों के अंदर कीमत को वाजिब किया है तो सोहबत से पहले अगर खावंद ने तलाक दी तो औरत को निस्फ कीमत यानी निस्फ महर मिलेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने गुलामों के निकाह के मसाइल पढ़ना शुरू किए थे। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि गुलाम और बांदी अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं गुलाम आका की इजाजत के बगैर निकाह कर सकता है, इसलिए क्योंकि गुलाम को शरीयत ने जो निकाह की इजाजत दी है वो उसके आदमी होने के एतबार से दी है, और आका जो गुलाम का मालिक होता है वो उसके माल होने के एतबार से होता है, तो गुलाम को जिस एतबार से निकाह की इजाजत है उस एतबार से आका उसका मालिक ही नहीं है, लिहाजा गुलाम अपनी मर्जी से निकाह कर सकता है। और नीज वो फरमाते हैं कि गुलाम तलाक का मालिक होता है, जब निकाह कर ले तो तलाक का मालिक खुद गुलाम होता है, तो जब गुलाम तलाक का मालिक है तो वो निकाह का भी मालिक होगा, इसलिए क्योंकि तलाक नाम है इजाला निकाह का, निकाह को खत्म करना, निकाह का इजाला करना, तो जब गुलाम इजाला निकाह का मालिक है तो ये तकाजा करता है कि वजूद निकाह का भी इसी को मालिक होना चाहिए भाई। जबकि इंदल अहनाफ गुलाम या बांदी अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकते, अगर यह निकाह करेंगे भी तो भी वो आका की इजाजत पर मौकूफ रहेगा, अगर आका ने इजाजत दे दी तो वह नाफिज हो जाएगा, अगर आका ने रद्द कर दिया तो वह निकाह बातिल हो जाएगा। और हम दलील के तौर पर हदीस पेश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा अब्दिन तज़व्वजा बिगैर इज़्नि मौलाहु फहुवा आहिरुन, कि जिस गुलाम ने भी अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह किया वो जिनाकार है। और नीज अकली दलील भी साहिब हिदाया ने जिक्र की कि गुलाम या बांदी के अंदर जो निकाह है यह ताजिरों के यहां ऐब शुमार होता है, इसकी वजह से इस गुलाम या बांदी की कीमत कम हो जाती है, लिहाजा गुलाम या बांदी को निकाह करने की यानी आका के माल में ऐब पैदा करने की इजाजत नहीं होगी भाई। और इसी तरह हुक्म है मुकातब का भी, और मुकातब वो गुलाम है जिससे आका ने अक्दे किताबत कर लिया कि इतने अरसे में इतना माल ले आओ तो तुम आजाद हो, ये जो मुकातब है याद रखो बाकी पाबंदियां तो इस पर हैं, अलबत्ता कमाई के मामले में शरीयत ने इसको आजाद इंसान जैसा कर दिया, अब ये जाएगा जाकर पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। आजादी बहुत बड़ी नेमत है, ये कोई मामूली चीज नहीं, कौन अपने गुलाम को मुकातब बनाता है, कौन उसको आजादी का मौका फराहम करता है, लेकिन यहां उसके आका ने उसको मौका फराहम कर दिया है आजादी का, तो शरीयत ने भी उस पर से पाबंदी हटा दी कि यह जाए पूरी कोशिश करे अपने आप को आजाद करवा ले। तो कमाई के मामले में मुकातब जो है आजाद आदमी की तरह है, अलबत्ता निकाह के मामले में वो आम गुलामों की तरह है, आका की इजाजत के बगैर वो निकाह नहीं कर सकता भाई। और इसी तरह मुकातबा भी है, अलबत्ता ये मुकातब और मुकातबा अपनी बांदी का निकाह करवा सकते हैं, वजह यह कि बांदी का निकाह करवाएंगे तो बांदी का महर मिलेगा और नीज उससे जो औलाद हासिल होगी वो भी गुलाम और बांदियां शुमार होंगे, तो उसमें तो कमाई की सूरत है, लिहाजा उसकी तो इनको इजाजत होगी मुकातब और मुकातबा को कि अपनी बांदियों का निकाह करवा सकते हैं, लेकिन यह खुद निकाह नहीं कर सकते और अपने गुलाम का निकाह भी नहीं करवा सकते भाई। और मुदब्बर और उम्मे वलद का भी यही हुक्म है, वो भी आका की मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकते। मुदब्बर वो गुलाम जिसे आका ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है, और उम्मे वलद वो बांदी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया और आका ने फिर इकरार कर लिया कि ये मेरा बच्चा है, तो ये उसकी उम्मे वलद बन गई। तो ये दोनों भी आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकते। और अगर गुलाम को आका निकाह की इजाजत दे दे और गुलाम निकाह कर ले तो वो जो महर होगा वो गुलाम के रकबे में दैन होगा, उसकी जात पर दैन होगा। और चूंकि वो निकाह आका की इजाजत से किया था तो ये दैन आका के हक में भी जाहिर है भाई, क्योंकि उसकी इजाजत से निकाह किया था। तो लिहाजा आका को या तो अब गुलाम का महर खुद अदा करना पड़ेगा या इस गुलाम को इस महर की अदायगी के लिए बेचा जाएगा और फिर जो पैसे वसूल होंगे उसके जरिए महर की अदायगी की जाएगी भाई। जबकि इसके मुकाबले में मुदब्बर या मुकातब ने अपने आका की इजाजत से निकाह किया है तो फिर उनको नहीं बेचा जाएगा क्योंकि उनका हक आजादी जाया होता है। तो लिहाजा वो जाएंगे और जाकर कोई काम काज करेंगे, पैसे कमाएंगे और अपनी कमाई के जरिए वो महर अदा करेंगे। उसके बाद आखिर में साहिब हिदाया ने एक मसला जिक्र फरमाया कि गुलाम ने आका की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया और आकर आका को बतलाया तो आका ने कहा तल्लिकहा, उस औरत को तलाक दे दे, या फारिकहा, उस औरत से जुदाई इख्तियार कर ले, तो क्या इसको इजाजत पर महमूल करेंगे या रद पर? भाई आका इजाजत देगा तो निकाह हो जाएगा और आका रद करेगा तो निकाह बातिल हो जाएगा। अब देखो इनके अंदर इजाजत का भी इहतमाल है, तल्लिकहा कि तू उस औरत को तलाक दे दे, और तलाक तो निकाह के बाद आती है, मालूम हुआ निकाह की इजाजत दे रहा है और उसके बाद तलाक का हुक्म दे रहा है। फारिकहा में भी इसी तरह है कि जुदा हो जाए, यानी निकाह तो हो गया है लेकिन अब तू क्या कर ले, उस औरत से जुदा हो जा, तो इसमें इजाजत वाला भी इहतमाल है और नीज इसमें रद का भी इहतमाल है कि आका निकाह को रद कर रहा है, और आका निकाह को रद करेगा तो वो मुनाकिद ही नहीं होगा, नाफिज ही नहीं होगा, बातिल हो जाएगा। तो अब इसको किस पर महमूल किया जाए, इजाजत पर या रद पर? कहते हैं यहां ये जो गुलाम है ये नाफरमान है और इसके लायक यही है कि इसको रद पर महमूल किया जाए, और नीज ये जो आकद है इसको तर्क करना और इसमें जुदाई इख्तियार करना इसके लिए भी तलाक का लफ्ज मजाजन इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहां इससे मजाजन, इससे रद ही मुराद लिया जाएगा। और नीज इसलिए भी क्योंकि एक है दफ़ए निकाह और एक है रफ़ए निकाह। दफ़ए निकाह निकाह के आने से पहले ही उसको दफा कर देना, यानी रद कर देना, बातिल कर देना, और एक है रफ़ए निकाह के पहले निकाह को साबित माना जाए और फिर उसको तलाक वगैरह के जरिए उठाया जाए भाई। तो दफ़ए निकाह में सिर्फ एक चीज है कि उसको रद कर दिया, और रफ़ए निकाह में दो चीजें हैं कि पहले निकाह को माना जाए और फिर उसको रफा किया जाए, उठाया जाए। तो मालूम हुआ दफा आसान है रफा के मुकाबले में, दफा के अंदर एक चीज है और रफा में दो चीजें हैं, निकाह भी और फिर उसको उठाना भी। तो लिहाजा जो अदना है, कम दर्जे वाला है, उसको मानना आसान है, तो इसलिए इसको दफा यानी रद पर महमूल किया जाएगा, रफा पर यानी इजाजत पर महमूल नहीं किया जाएगा। और जबकि इसके मुकाबले में अगर गुलाम आका के पास आया, उसने बगैर इजाजत के निकाह किया है और आका को बतलाया और आका ने उसको कहा कि अपनी बीवी को तलाके रजई दे दे, तो इस सूरत में फिर ये इजाजत है क्योंकि तलाके रजई तो निकाह सहीह के बाद ही आया करती है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वमन قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يؤخذ منه إذا عتق। سورة مسألة یہ کہ آقا نے غلام کو نکاح کی اجازت دے دی کہ تزوج هذه الأمة, اس باندی سے نکاح کر لو, याद रखो ये हादिहिल अमा की कैद मतन में मौजूद है। आका ने गुलाम से क्या कहा, तजव्वज हादिहिल अमता, इस बांदी से निकाह कर लो। उलमा फरमाते हैं कि ये कैद इत्तेफाकी है भाई, ये जरूरी नहीं कि बांदी के साथ ही निकाह की इजाजत दे, आजाद औरत के साथ भी अगर आका निकाह की इजाजत देगा तो मसला इसी तरह होगा। तो सूरत ये, आका ने अपने गुलाम को इजाजत दे दी कि निकाह कर लो और उसने जाकर निकाह फासिद कर लिया, यानी उसको मसले का पता नहीं था, उसने बगैर गवाहों के ही उस औरत के साथ इजाब और कबूल कर लिया और फिर उसके साथ उसने सोहबत भी कर ली, सोहबत भी कर ली। और मैंने आपको बतलाया था कि निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है, वो कल आदम है, उसका एतबार ही कोई नहीं। हां अगर निकाह फासिद के बाद खावन ने बीवी से सोहबत कर ली फिर अब अहकाम आ जाएंगे, अब महर भी देना पड़ेगा, अब औरत को बाद में इद्दत भी गुजारना पड़ेगी जुदाई के बाद, और नीज अगर औरत हामिला हो गई और उसने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा भी इसी खावंद का शुमार होगा, वो साबितुन नसब होगा, उसको वलदे जीना शुमार नहीं किया जाएगा भाई। तो अब आका ने इजाजत दी और गुलाम ने जाकर निकाह फासिद कर लिया और सोहबत भी कर ली। तो अब क्या ये जो गुलाम के ऊपर महर आ गया, क्योंकि सोहबत कर ली है निकाह फासिद में, महर उसके ऊपर आ गया, तो ये जो महर है क्या ये आका के हक में जाहिर है, क्या ये आका को अदा करना पड़ेगा और अगर वो अदा नहीं करता तो गुलाम को बेचना पड़ेगा? तो इमाम साहब फरमाते हैं हां, आका ने जब उसको इजाजत दी थी निकाह की तो ये इजाजत आम है, मुतलक है, ये निकाह सही को भी शामिल और निकाह फासिद को भी शामिल है, लिहाजा आका की इजाजत से गोया ये निकाह हुआ और आका की इजाजत से यह महर उस गुलाम पर वाजिब हुआ है, लिहाजा आका के हक में भी यह महर जाहिर है, लिहाजा ये महर या तो आका अदा करे वरना इस गुलाम को बेचना पड़ेगा और उसके जरिए महर अदा किया जाएगा। जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, आका ने उसको इजाजत दी थी निकाह की और उससे मुराद निकाह सहीह है, निकाह फासिद मुराद नहीं। जब निकाह फासिद उससे मुराद ही नहीं है तो मालूम हुआ ये जो इसने निकाह किया है और ये जो सोहबत की है इसकी तो आका ने उसको इजाजत ही नहीं दी थी। जब इजाजत ही नहीं दी थी तो गुलाम ने ये गोया अपनी तरफ से एक काम किया है, जब अपनी तरफ से एक काम किया है तो इस देन का जिम्मेदार आका नहीं है, लिहाजा आका से न तो यह देन वसूल किया जा सकता है और न ही इस गुलाम को बेचकर इसको वसूल जाएगा, बल्कि यह देन गुलाम पर लाजिम है, गुलाम की जात पर यह देन आ गया। अगर कभी जिंदगी में आका ने इसको आजाद कर दिया या किसी और ने खरीद कर आजाद कर दिया तो फिर उस वक्त इससे इस देन का मुतालबा किया जाएगा और यह जाकर कमाई करेगा और इस महर को अदा करेगा। इन फिलहाल ना आका से इसका मुतालबा हो सकता है और ना इस गुलाम को बेचकर यह महर वसूल किया जा सकता है, क्योंकि इसने आका की मुखालफत की है, आका की इजाजत के मुताबिक इसने निकाह नहीं किया। जब आका की इजाजत के मुताबिक निकाह नहीं किया तो ये जो महर इसके ऊपर आया है निकाह फासिद और फिर वती की वजह से, ये आका के हक में जाहिर ही नहीं है, आका ने तो इसकी इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा आका से इसका मुतालबा भी नहीं और इस गुलाम को बेचकर इस देन को वसूल भी नहीं किया जाएगा। भाई जब आप गुलाम को बेचेंगे तो आका का नुकसान होगा या नहीं? उसके हाथ से गुलाम निकल जाएगा और उसी से फिर महर वसूल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो आका को मिलेगा, तो आका का तो नुकसान हो गया। कहते हैं नहीं, आका का इस निकाह फासिद में और इस वती के अंदर आका की कोई इजाजत नहीं थी, लिहाजा ये देन आका के हक में जाहिर नहीं है, ये गुलाम पर ही आएगा और गुलाम अगर कभी आजाद हो गया फिर इससे ये मुतालबा होगा और फिर इसको अदा करना पड़ेगा, उससे पहले इसके वसूली की अब कोई सूरत नहीं है। जबकि इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि आका ने निकाह की इजाजत दी है और निकाह का लफ्ज मुतलक है, ये निकाह सही को भी शामिल और निकाह फासिद को भी शामिल, लिहाजा ये जो महर भी गुलाम पर आया है ये गोया आका की इजाजत से आया है, तो ये आका के हक में जाहिर है। जब आका के हक में जाहिर है तो अब आका से ये वसूल किया जाएगा, अगर वो नहीं देता तो इस गुलाम को बेचकर वसूल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, कहते हैं वमन काल अली आब्दी ही, और जिस शख्स ने अपने गुलाम से कहा तजव्वज हादिहिल अमता, इस बांदी से निकाह कर ले, निकाह का हुक्म दे रहा है यानी इजाजत दे रहा है। और मैंने बताया हादी हिल अमा की कैद इत्तेफाकी है, आजाद औरत से निकाह की इजाजत दे तब भी यही मसला है। तो कहते हैं वमन काल अली अब्दिही, और जिस शख्स ने अपने गुलाम से कहा तज़व्वज हादिही अल अमता, कि तू इस बांदी से निकाह कर ले, फतज़व्वजहा निकाहन फासिदन, तो इस गुलाम ने उस बांदी से निकाह फासिद कर लिया यानी बगैर गवाहों के मसलन निकाह कर लिया, वदखला बिहा और इसने उसके साथ सोहबत कर ली, फइन्नहु युबाउ फिल महर इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो यह गुलाम जो है इसको महर के लिए बेचा जाएगा इमाम साहब के नजदीक, वकाला युखदु मिन ईदा अतका, और साहिबैन फरमाते हैं युखदु मिन्हु कि यह महर इसी गुलाम से लिया जाएगा ईदा अतका, जब यह आजाद हो जाए। आजाद होना कोई यकीनी तो नहीं है, लेकिन आजादी के बाद ही वसूल करेंगे अगर मौका बन गया, अगर ना बना तो फिर वसूली की कोई सूरत ही नहीं है। तो कहते हैं वकाला साहिबैन फरमाते हैं यू खदुम मिन हु इदा आतका, के गुलाम से महर लिया जाएगा इदा आतका, जब वो आजाद हो जाए, व असलूहू, और इमाम साहब का जाबता यह है कि अन्नल इज़्न फिन निकाह यंतज़िमुल फासिदा वल जाइज़ा इंदहू, अन्नल इज़्न फिन निकाह ही कि निकाह के अंदर जो इजाजत है, यंतज़िमुल फासिदा वल जाइज़ा, ये शामिल है निकाह फासिद को भी और निकाह जायज को भी, इंदहू इमाम साहब के नजदीक, फयकून हादल महरु जाहिरन फी हकिल मौला, लिहाजा ये जो महर है ये आका के हक में भी जाहिर है क्योंकि उसने इजाजत दी थी, व इंदहुमा और साहिबैन के नजदीक, यंसरिफु इलल जाइज़ी ला गैरू, जबकि साहिबैन के नजदीक निकाह के अंदर जो इजाजत है, यंसरिफु इलल जाइज़ी, ये सिर्फ जायज निकाह की तरफ पलटती है, ला गैरु उसके अलावा नहीं, यानी आका जब निकाह की इजाजत दे तो ये सिर्फ जायज निकाह को शामिल है, ये इजाजत निकाह फासिद को शामिल नहीं, उसकी इजाजत नहीं है। तो कहते हैं वाइंदहुमा और साहिबैन के नजदीक, यंसरिफु इलल जाइज़ी ला गैरु, कि ये इजाजत जो है जायज निकाह की तरफ पलट जाएगी, ला गैरु ना कि उसके अलावा की तरफ, फला यकून जाहिरन फी हकिल मौला, लिहाजा ये जो निकाह फासिद और वती की वजह से जो महर आया है ये आका के हक में जाहिर नहीं है, फयुआखदु बिही बादल अताकी, तो लिहाजा उस गुलाम का मुआखजा होगा इस महर के साथ, बादल अताकी आजादी के बाद, जब ये आजाद हो जाएगा फिर इसका मुआखजा किया जाएगा, तो आजाद होगा तो उसके बाद उसका मुआखजा किया जाएगा। लहू मा, साहिबैन की दलील यह है कि अन अल मकसूद अमिन निकाह ही, कि निकाह के जरिए जो मकसूद होता है, निकाह के जरिए जो मकसद होता है, फिल मुस्तकबिल इफाफ व तहसीन, देखो आफा या इफू बाबे जराबा से है, आफा या इफू का माना है पाक दामन होना, यानी खुद पाक दामन होना, और बाबे इफ़ाल में ले जाएं आफा युइफू इफाफन, इसके माने हैं पाक दामन बनाना, और आगे तहसीन का लफ्ज आ रहा है सौद के साथ, हस्सना युहस्सिनु तहसीनन, इसके माने हैं महफूज बनाना, हिफाजत करना। तो कहते हैं साहिबैन की दलील चल रही है, लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल मकसूद फिन निकाही, कि वो चीज जो निकाह के अंदर मकसूद होती है, फिल मुस्तकबिली, वो मुस्तकबिल के अंदर, अल इफाफ व तहसीनु, वो अपने आप को पाक दामन बनाना है, व तहसीनु, और अपनी जात को महफूज करना है, यानी जिना और हरामकारी से। निकाह का मकसद क्या होता है? अपने आप को पाक दामन बनाना ताकि इंसान गुनाहों से बच जाए, और तहसीन यानी अपनी जात को महफूज बनाना हराम से, जिना से। तो कहते हैं अन्नल मकसूद मिन निकाह के, वो चीज जो निकाह के जरिए मकसूद होती है, फिल मुस्तकबिल इफाफ व तहसीन, वो मुस्तकबिल के अंदर अपने आप को पाक दामन बनाना और महफूज बनाना होता है, वदालिका बिल जाइजी, और ये मकसद तो जायज निकाह के जरिए ही हो सकता है, वलिहादा लौ हलफा, और इसीलिए अगर किसी शख्स ने यह कसम उठा ली, ला यतज़व्वजु, कि वो निकाह नहीं करेगा, यंसरिफु इलल जाइज, तो ये पलट जाएगी जायज निकाह की तरफ। साहिबैन इसको कयास करते हैं कसम पर, कि मसलन एक शख्स कसम उठा लेता है कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, और फिर इस शख्स ने निकाह फासिद कर लिया, तो बिल इत्तेफाक ये शख्स हानिस नहीं हुआ, भाई निकाह फासिद किया है इसको मसले का पता नहीं, बात चल रही है कि कसम टूटी है या नहीं। तो साहिबैन फरमाते हैं बिल इत्तेफाक इसकी कसम अभी भी नहीं टूटी, यह खानिस नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्या कहा था कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा। और निकाह से कौन सा निकाह मुराद लेते हैं? जायज निकाह मुराद लेते हैं, फासिद निकाह मुराद नहीं लेते। तो जायज निकाह ये करेगा तो हानिस हो जाएगा, और इसने इस वक्त फासिद निकाह किया है तो हानिस नहीं है भाई। तो कहते हैं वलिहादा लव हलफा, और इसीलिए अगर किसी शख्स ने कसम उठा ली ला यतज़व्वजु के वो निकाह नहीं करेगा, यंसरिफु इलल जायजी, तो ये कसम पलट जाएगी जायज निकाह की तरफ और फासिद निकाह से वो हानिस नहीं होगा। बिखिलाफिल बैई, बखिलाफ बैअ के। भाई मैंने आपको बतलाया था कि निकाह फासिद और निकाह बातिल एक ही चीज है, जबकि बैअ के अंदर बैअ बातिल और है, बैअ फासिद और है। बैअ बातिल वो है जो अपनी जात के एतबार से ही जायज ना हो, यानी मबीआ माल ही ना हो। जब मबीआ माल ही नहीं है तो बैअ हुई ही नहीं भाई, बैअ कहां से होगी जब मबीआ ही माल नहीं है। जबकि बैअ फासिद जो है वो जात के एतबार से तो जायज है लेकिन वसफ के एतबार से जायज नहीं होती। मसलन बाय या मुश्तरी में से कोई एक अपने फायदे की शर्त लगा देता है आकद के अंदर, तो इस सूरत में यह आकद फासिद हो जाता है। मसलन एक शख्स अपनी गाड़ी दूसरे को फरोख्त करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह गाड़ी फरोख्त करता हूं 10 लाख में, लेकिन शर्त यह है कि 1 हफ्ते बाद गाड़ी दूंगा। देखो अकद अभी कर रहा है और 1 हफ्ता ये खुद गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये शर्ते फासिद है, इसमें बाय का फायदा है, तो ये बै फासिद हो गई। या इसी तरह आजकल जैसे अक्सर लोग करते हैं, मकान किसी को बेचते हैं कि ये मकान मैं आपको मसलन 50 लाख में बेचता हूं, लेकिन शर्त ये है हम 3 महीने बाद खाली करेंगे, हम 3 महीने बाद खाली करेंगे। भाई ये शर्त तो मुक्तज़ाए आकद के खिलाफ है, आकद तो ये तकाजा करता है कि आकद होते ही मुश्तरी इस मकान का मबीए का मालिक बन गया है, अब फौरन ये उसके हवाले किया जाए। तो लिहाजा इस तरह आकद करना ये बैए फासिद है। हां शर्त न लगाई जाए कि ये मकान मैंने आपको 50 लाख में फरोख्त किया और फिर आकद के बाद कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो 1 महीने में हम खाली कर देंगे, 1 महीने का वक्त दे दें, और फिर मुश्तरी राजी हो जाता है कि ठीक है 1 महीने में आप खाली कर दें। तो देखो अब वही सूरत जो शर्त की वजह से नाजायज थी अब बगैर शर्त के जायज हो गई भाई। तो लिहाजा बैअ के अंदर ऐसी शर्त लगाना जिसमें मुश्तरी या बाय में से किसी एक का फायदा हो, तो इस सूरत में यह बैअ फासिद है। और मैंने आपको बतलाया था कि यह बैअ भी शरअन कल अदम है, इसका शुमार नहीं। अलबत्ता इसके अंदर दोनों ने ईजाब और कबूल तो बहरहाल किया है और नीज मबीआ माल भी है, तो मुश्तरी जब मबीआ पर कब्जा कर लेगा तो मुश्तरी फिर उसका मालिक बन जाएगा। बैअ सहीह के अंदर तो ईजाब और कबूल करते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है, लेकिन बैअ फासिद के अंदर जब वो मबीए पर कब्जा करेगा तब मालिक बनेगा। और ये बैअ चूंकि फासिद है लिहाजा दोनों गुनाहगार होंगे, दोनों पर लाजिम है इस बैअ को तोड़ दें, नए सिरे से सही तरीके से बैअ करें भाई। लेकिन बहरहाल अगर वो मसले का उनको पता नहीं है वो इसी तरह बैअ कर लेते हैं और फिर मुश्तरी मबीए पर कब्जा कर लेगा तो मालिक बन जाएगा और फिर वो इस मबीए में जो तसर्रुफ करना चाहे कर सकता है, इसको आगे बेचना चाहे, किसी को हिबा करना चाहे वगैरह, जो भी तसर्रुफ करना चाहे। तो गुनाहगार तो है लेकिन वह बहरहाल मबीए का मालिक बन चुका है और उसमें तसर्रुफ कर सकता है भाई। और मैंने यह भी बतलाया था कि बैअ फासिद के अंदर समन नहीं आते मुश्तरी पर, बल्कि उस पर उसकी कीमत आएगी, क्योंकि बैअ होती तो समन आते, जब बैअ का ही एतबार नहीं तो उसमें जिक्र करदा समन का भी कोई एतबार नहीं, लिहाजा मुश्तरी को उस मबीए की कीमत देना पड़ेगी। तो अब बात चल रही थी कि अगर आका ने अपने गुलाम को निकाह की इजाजत दी तो इमाम साहब के नजदीक ये इजाजत निकाह फासिद को भी शामिल और निकाह सहीह को भी शामिल है, जबकि साहिबैन के नजदीक ये इजाजत सिर्फ निकाह सहीह को शामिल है, निकाह फासिद को शामिल नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में साहिबैन फरमाते हैं अगर आका अपने गुलाम को बैअ की इजाजत दे दे तो यह इजाजत बैअ सही और फासिद दोनों को शामिल है। निकाह में इजाजत देगा तो सिर्फ निकाह सही को शामिल है, फासिद को यह इजाजत शामिल नहीं। जबकि बैअ की अगर आका अपने गुलाम को इजाजत देता है तो फिर इस सूरत में बिल इत्तेफाक बैअ सही की भी इजाजत है उसको और बैअ फासिद की भी इजाजत है। भाई वजह यह कि वो फरमाते हैं कि बैअ फासिद से भी बैअ के बाज मकासिद हासिल हो जाते हैं, बैअ फासिद से भी बैअ के बाज मकासिद हासिल हो जाते हैं। बैअ का एक मकसद क्या होता है कि मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाए, और बैअ फासिद के अंदर भी मुश्तरी जब मबीए पर कब्जा करेगा तो उस मबीए का मालिक बन जाएगा और फिर मुश्तरी उसमें जो तसरुफात करना चाहे वो तसरुफात उस मबीए में कर सकता है। मालूम हुआ बैअ फासिद से भी बैअ के बाज मकासिद हासिल हो जाते हैं कि मुश्तरी मबीए में हर तरह के तसरुफात फिर कर सकता है जब उसका मालिक बन जाए। तवज्जो है, बैअ सही में भी मुश्तरी बैअ करते ही मबीए का मालिक बन जाता है और फिर जब कब्जा भी कर लेगा तो वो उसमें हर तरह के तसरुफात कर सकता है। बैअ फासिद के अंदर भी इसी तरह मुश्तरी जब मबीए पर कब्जा करेगा तो मालिक बन जाएगा, वो उसमें हर तरह के तसरुफात कर सकता है। तो बात यह चल रही थी कि अगर आका ने गुलाम को बैअ की इजाजत दी तो यह बैअ सही को भी शामिल और बैअ फासिद को भी, इसलिए क्योंकि बैअ फासिद से भी बैअ के बाज मकासिद हासिल हो जाते हैं, यानी मुश्तरी मबीए में तसरुफात कर सकता है। लेकिन निकाह के अंदर, निकाह के अंदर मकसूद क्या था? अपनी पाकदामनी मकसूद थी, निकाह के अंदर पाकदामनी मकसूद थी, और निकाह फासिद से तो वो पाकदामनी हासिल नहीं हो सकती क्योंकि वो औरत अभी भी इस शख्स के लिए हलाल नहीं हुई भाई, क्योंकि निकाह फासिद है भाई। तो साहिबैन क्या फरमाते हैं कि निकाह की इजाजत दे आका तो निकाह सही को शामिल है, निकाह फासिद को शामिल नहीं, क्योंकि निकाह फासिद के जरिए निकाह के मकासिद हासिल नहीं होते। लेकिन अगर आका जो है गुलाम को बैअ की इजाजत देगा तो बैअ सही की भी इजाजत हो गई, बैअ फासिद की भी इजाजत हो गई, क्योंकि बैअ फासिद के जरिए भी बैअ के मकासिद हासिल हो जाते हैं। तो कहते हैं बिखिलाफिल बैअ, बखिलाफ बैअ के जब आका अपने गुलाम को बैअ की इजाजत दे तो वो फासिद को भी शामिल होगी। लिअन्न बाज़ल मकासिद हासिलुन, इसलिए क्योंकि बैअ फासिद के जरिए भी बाज़ मकासिद हासिल हो जाते हैं, वह हुआ मिल्कु तसरुफाती, और वह तसरुफात का मालिक होना है कि मुश्तरी कब्जे के बाद उस मबीए में तसरुफात का मालिक हो जाता है। वलहू, इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्ना लफ्ज मुतलक, कि यह लफ्ज मुतलक है। आका ने गुलाम से क्या कहा था? तजव्वज हाज़िही अमाता, तो तजव्वज का लफ्ज मुतलक है, निकाह कर ले, और इसमें कोई कैद नहीं है कि सही निकाह कर या फासिद निकाह कर, नहीं, तो यह मुतलक है। और अल मुतलक यजरी अला इतलाकी ही, मुतलक अपने इतलाक पर जारी होगा। जब यह मुतलक है यह हर किस्म के निकाह को शामिल हो गया, चाहे निकाह सही हो चाहे निकाह फासिद। आका ने क्या कहा? निकाह कर ले तो निकाह सही कर लेगा वो भी निकाह है, निकाह फासिद करेगा वो भी निकाह है, तो देखो दोनों को शामिल है। तो कहते हैं वलहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न लफ्ज मुतलक, उनकी ये तजव्वुज का लफ्ज मुतलक है। फयजरी अला इतलाक ही, तो ये अपने इतलाक पर जारी होगा। कमा फिल बैअ, जैसे किसके अंदर है? बैअ के अंदर। बैअ के अंदर तो साहिबैन भी तस्लीम करते हैं कि बैअ की इजाजत देगा तो वह बैअ सही को भी शामिल और बैअ फासिद, तो निकाह के अंदर भी तजव्वुज का लफ्ज मुतलक है, लिहाजा ये निकाह सही को भी शामिल होगा और निकाह फासिद को भी। तो कहते हैं फिर देखिए, वलहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न लफ्ज मुतलक, उनकी ये तजव्वुज का लफ्ज मुतलक है। फयजरी अला इतलाक ही, तो ये अपने इतलाक पर जारी होगा। कमा फिल बैअ, जैसे कि बैअ के अंदर है। व बाज़ुल मकासिद फिन निकाहिल फासिद हासिलुन, साहिबैन ने क्या कहा था कि बैअ फासिद के अंदर भी बैअ के बाद मकासिद हासिल हो जाते हैं, इसलिए बैअ फासिद शामिल है मुतलक बैअ की इजाजत में। लेकिन निकाह के जरिए निकाह के मकासिद यानी पाकदामनी हासिल नहीं होती, लिहाजा मुतलक निकाह के लफ्ज़ में निकाह फासिद शामिल नहीं। उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई बाज मकासिद तो निकाह फासिद के जरिए भी हासिल हो जाते हैं, जैसे निकाह सही की वजह से औलाद हो तो उसका नसब खावन से साबित होता है, तो निकाह फासिद में भी औलाद हो तो उसका नसब खावन से साबित होता है। नीज जैसे निकाह सही के अंदर जुदाई की सूरत में औरत पर इद्दत आती है, तो निकाह फासिद में भी अगर सोहबत कर ली है तो जुदाई के बाद औरत पर इद्दत आएगी। और नीज जिस तरह निकाह सही की वजह से खावन पर महर वाजिब होता है, निकाह फासिद में भी जब वती कर लेगा तो खावन पर महर वाजिब होगा। तो देखो निकाह के बाज मकासिद तो निकाह फासिद से भी हासिल हो रहे हैं, लिहाजा मुतलक निकाह जो है निकाह सही को भी शामिल होगा और निकाह फासिद को भी शामिल होगा। जैसे मुतलक बया की इजाजत बया सही को भी शामिल है और बया फासिद को भी शामिल है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह बाजुल मकासिद फिन निकाह फासिद हासिल, और बाज मकासिद तो निकाह फासिद में भी हासिल हैं, कन नसबी व वजूबिल महर वल इद्दती, जैसे कि नसब है और महर का वाजिब होना है और इद्दत का वाजिब होना है, अला तिबारी वजूदिल वती, वती के पाए जाने के एतबार से यानी सोहबत के पाए जाने के एतबार से, व मसअलतुल यमीन ममनूअतुन अला हादिही तरीकती, और कसम का जो मसला है, साहिबैन ने कसम के मसले पर कियास किया था। साहिबैन फरमाते हैं आका ने गुलाम को निकाह की इजाजत दी है तो यह सिर्फ निकाह सही को शामिल है, निकाह फासिद को शामिल नहीं। कहते हैं जैसे एक शख्स कसम खा लेता है कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा तो यह कसम सिर्फ निकाह सही को शामिल है, निकाह सही करेगा तब ही यह हानिस होगा, अगर निकाह फासिद कर लेगा तो हानिस नहीं होगा। तो उन्होंने इस निकाह की इजाजत को कसम पर कियास किया था। उसका भी जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया कि वह मसअलतुल यमीन ममनूअतुन अला हादिही तरीकती, कि कसम का जो मसला है ममनूअतुन वो ममनूअ है यानी हमें तस्लीम नहीं है, अला हादिही तरीकती इसी तरीके पर, कसम का मसला भी हमें इसी तरीके पर तस्लीम नहीं। आपने कहा था कि कसम की सूरत में निकाह सही से हानिस होगा, निकाह फासिद से हानिस नहीं, हमें यह तस्लीम नहीं है, निकाह फासिद से भी वो हानिस हो जाएगा, क्योंकि वहां भी उसने मुतलक निकाह की बात की है कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, तो वो लफ्ज क्या है मुतलक, और अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, तो वो जो भी निकाह करेगा हानिस हो जाएगा, चाहे निकाह सही हो चाहे निकाह फासिद हो। तो कहते हैं वह मसअलतुल यमीनी, और यमीन का जो मसला है ममनूअतुन वो ममनूअ है यानी हमें तस्लीम नहीं है, अला हादिही तरीकती इसी तरीके पर, कि वो भी मुतलक है वो भी अपने इतलाक पर जारी होगा। या ये जवाब दिया जाएगा इमाम साहब की तरफ से, अगर तस्लीम कर लें हम इमाम साहब के नजदीक भी वो कसम सिर्फ निकाह सही पर महमूल है, निकाह फासिद से वो हानिस नहीं। अगर तवज्जो है, पहला जवाब तो मनई दिया हमें तस्लीम ही नहीं है कि वो कसम सिर्फ निकाह सही को शामिल है बल्कि वो निकाह फासिद को भी शामिल है, निकाह फासिद भी करेगा तो हानिस हो जाएगा। या दूसरा जवाब ये दिया जा सकता है इमाम साहब की तरफ से कि अगर तस्लीम कर लिया जाए इमाम साहब के नजदीक भी कसम सिर्फ निकाह सही को शामिल है फासिद को शामिल नहीं है, अगर यह मान लिया जाए, अव्वलन तो बतला दिया कि हमें यह तस्लीम नहीं कि इमाम साहब के नजदीक यह सिर्फ सही को शामिल है बल्कि यह फासिद को भी शामिल है, लेकिन अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए कि इमाम साहब के नजदीक भी यह कसम सिर्फ निकाह सही को शामिल है, तो उसकी वजह यह है कि कसम का दारोमदार उर्फ पर होता है, उर्फ यानी आम लोगों की आदत पर। याद रखो जब भी कोई शख्स किसी मसले में कसम खाए तो देखा जाएगा कि आम लोग इसका क्या माना लेते हैं और उसके मुताबिक वो ही मुराद होगा वहां पर भाई। तो यहां पर भी जब एक शख्स ने कहा वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा तो आम लोग इससे कौन सा निकाह मुराद लेते हैं, निकाह सही मुराद लेते हैं, तो यह उर्फ की वजह से निकाह सही मुराद होगा यहां पर। तो ये कसम का मसला तो बाकी मसलों से अलग है, ऐसा ही बहन आप इस पर कियास नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वमन ज़व्वज़ अब्दम मदयूनम माज़ूनन लहुम रअतन जाज़ा वल मर अत उसवतुन लिल गुरमा इफी महरिहा। सूरत मसला ये, एक शख्स जो है उसने अपने गुलाम को तिजारत की इजाजत दे दी। गुलाम होशियार आदमी था तो आका ने कहा जाओ भाई तिजारत करो और पैसे कमा कर लाओ। तो ये गुलाम जिसको आका ने तिजारत की इजाजत दी हो उसको कहते हैं अब्दे माजून लहू, माजून लहू यानी वो गुलाम जिसको इजाजत दी गई है यानी तिजारत की, माजून लहू तिजारत भाई यानी जिसको तिजारत की इजाजत दी गई है। तो ये अब्दे माजून लहू जो है ये गया और इसने तिजारत शुरू कर दी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पे दर पे इसको नुकसानात हुए और इस पर बहुत सा कर्जा चढ़ गया, ये मकरूज हो गया, इस पर दुयून आ गए, अब ये मदयून हो गया, तवज्जो है। और आपने पढ़ा है कि गुलाम पर जब आका की मर्जी से दुयून आ जाए तो आका को वो अदा करने पड़ेंगे, और अगर आका अदा नहीं करता तो उसके इस गुलाम को पकड़कर बेचेंगे और कर्जे अदा करेंगे। अब ये जो आब्दे माजून लहू था और मदयून था, फिर आका ने इसका निकाह करवा दिया या इसको निकाह की इजाजत दे दी और इसने निकाह कर लिया। अब इसके ऊपर महर वाला भी देन आ गया, तो इसकी वजह से अब तो बाकी जो कर्ज खा थे उनका नुकसान हो रहा है। पहले गुलाम को बेचते जितने पैसे वसूल होने थे वो सारे उन कर्ज खाहों में तकसीम होने थे, लेकिन अब इस औरत का महर भी इस गुलाम पर आ गया, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा करना आका के लिए जायज है? क्या वो आब्दे माजून लहू जो कि मदयून हो चुका है, मकरूज हो चुका है, उसका निकाह करवा सकता है, यानी उस पर और देन भी लाजिम कर सकता है वो महर को? तवज्जो है, तो इसमें तो बाकी मकरूजों का हक बातिल हो रहा है। तो कहते हैं हां भाई आका निकाह करवा सकता है, आका निकाह करवा सकता है। तो कहते हैं वमन ज़व्वजा अब्दम मदयूनम माज़ूनन लहुम रअतन जाज़ा, कहते हैं वमन ज़व्वजा जिसने निकाह करवाया अब्दम मदयूनन एक ऐसे गुलाम का, मदयूनन जो मकरूज है, माज़ूनन लहू और माज़ून लहू है, इसका निकाह करवाया आका ने इमरातन किसी औरत से, जाज़ा तो ये जायज है, आका ये निकाह करवा सकता है। वल मर अतु उसवतुन लिल गुरमाई, गुरमा जमा है गरीम की, गरीम कर्ज खाह को भी कहते हैं और मकरूज को भी कहते हैं, जिस पर कर्जा है उसको भी गरीम कहते हैं और जिसने कर्जा वसूल करना है उसको भी गरीम कहते हैं। तो यहां इससे मुराद कर्ज खाह हैं, वो जो कर्जा वसूल करना जिनका हक है भाई। तो कहते हैं वल मर अतु उसवतुन लिल गुरमाई, और औरत जो है वो बराबर होगी कर्ज खाहों के, फी महरिहा अपने महर में, यानी औरत भी और कर्ज खाहों के साथ अपने महर में बराबर हो गई, यानी जैसे औरों ने अपना अपना हिस्सा वसूल करना है औरत ने भी अपना हिस्सा वसूल करना है, लिहाजा इस गुलाम को बेचेंगे और अगर इसके जरिए सारी अदायगी हो सकती है तो फिर तो कोई खराबी नहीं, फिर तो सबको उनके दुयून अदा कर देंगे। लेकिन अगर सबके दुयून अदा नहीं होते इस गुलाम से तो अब औरत भी शामिल हो गई, तो अब तो बाकियों के हिस्से में और ज्यादा कमी आ जाएगी। कहते हैं बेशक बाकियों के हिस्से में कमी आ जाए, औरत भी बाकियों के साथ शरीक हो गई। अब गुलाम को बेचेंगे, जो पैसे वसूल होंगे हर एक को उसके हिस्से के बकदर जितनी अदायगी मुमकिन हुई कर देंगे, यानी जिसका कर्ज ज्यादा होगा उसको हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा, जिसका कर्ज कम है उसको हिस्सा भी कम मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि सारा कर्जा तो अदा हो नहीं सकता, तो सबका कुछ ना कुछ कर्जा अदा करेंगे और वो उनके कर्जों के तनासुब से है। तवज्जो है, मसलन फर्ज करो अगर दो आदमियों का कर्जा होता, दो आदमियों का कर्जा होता, एक आदमी के गुलाम ने 10 लाख देने हैं और दूसरे के गुलाम ने 5 लाख देने हैं, तो देखो एक का कर्जा दूसरे के मुकाबले में दुगना है, लिहाजा इस गुलाम को बेचा गया और मसलन इस गुलाम की कीमत 3 लाख थी, तो अब ये 3 लाख दोनों में इस तरह तकसीम करेंगे कि ज्यादा वाले को कम वाले से दुगना देंगे, क्योंकि उसका कर्ज भी दुगना है, तो 3 लाख में से 2 लाख जो है वो 10 लाख वाले को दे देंगे और 1 लाख वो 5 लाख वाले को दे देंगे। सूरत समझ में आ रही है? तो यहां भी इसी तरह मसला है कि वो औरत भी और कर्जखाहों के साथ शरीक हो जाएगी और गुलाम को बेचकर जो पैसे आएंगे वो इस औरत समेत तमाम कर्जखाहों को उनके हिस्से के तनासुब से जितनी जितनी अदायगी हो सकती है वो कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वल मर अतु उस्वतुन लिल गुरमा इफी महरिहा, और औरत जो है बराबर है और कर्ज खाहों के अपने महर के सिलसिले में। व मानाहु इदा कान निकाह बी महरिल मिसली, साहिब हिदाया फरमाते हैं व मानाहु कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के इस कौल का माना यह है, ये जो इन्होंने पीछे मसला जिक्र किया कि औरत और कर्ज खाहों के साथ बराबर होगी, तो इसका माना यह है इदा कान निकाह भी महरिल मिसली कि जब निकाह महरे मिसल के साथ हो गई, यानी आकान ने अपने गुलाम का जो निकाह करवाया है इस औरत के साथ वो इस औरत के महरे मिसल के साथ करवाया हो तो फिर ये औरत और कर्जखाहों के साथ बराबर होगी कर्ज की वसूली में। लेकिन अगर आका ने इस औरत का महर ज्यादा मुकर्रर कर दिया, मसलन इस जैसी औरत का महर तो 1000 दिरहम होता है लेकिन आका ने इसका महर 2000 या 3000 दिरहम मुकर्रर कर दिया है, तो फिर याद रखो महरे मिसल तक, यानी महरे मिसल तक ये औरत और कर्जखाहों के साथ बराबर होगी और जो महरे मिसल से जायद होगा वो देने मरज के दर्जे में होगा, यानी महरे मिसल तक जो मिकदार है वो देने सेहत के दर्जे में और जो महरे मिसल से जो जायद है वो देने मरज के दर्जे में होगा। भाई देने सेहत और देने मरज इसको समझ लें। भाई याद रखो जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो सबसे पहले उसके माल में से उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है और उसके बाद फिर उसके कर्जे अदा किए जाते हैं, चाहे इन कर्जों की अदायगी में उसका सारा माल ही क्यों ना खर्च हो जाए, और कर्जों की अदायगी के बाद फिर अगर माल बच जाता है तो फिर इस बाकी माल के सुलुस के अंदर जो है उस शख्स ने अगर कोई वसीयत की है तो उसको नाफिज किया जाता है। वसीयत सिर्फ सुलुस माल में नाफिज होगी और बाकी का माल जो है वो वारिसों का हक है, फिर वो वारिसों में तकसीम किया जाएगा। तो मालूम हुआ कि कर्जे वसीयत पर भी मुकदम हैं और वारिसों के हक पर भी मुकदम हैं, तो कर्जे सारे अदा करने पड़ेंगे। और फिर याद रखना ये कर्जे 2 किस्म पर हैं, कुछ को देने सेहत कहते हैं और कुछ को देने मरज कहते हैं। और याद रखो देने सेहत का दर्जा मुकद्दम होता है, पहले देने सेहत सारे अदा किए जाएंगे और अगर कुछ माल बच गया तो फिर उसके बाद देने मरज अदा किए जाएंगे और उसके बाद फिर वसीयत और वारिसों का नंबर आता है। तरतीब समझ में आ रही है? तो अगर वो मरने वाले का माल इतना है कि जिससे सारे कर्जे अदा हो सकते हैं, देने सेहत भी और देने मरज भी, फिर तो कोई इश्काल नहीं, फिर तो सारे कर्जे अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर उस शख्स का माल इतना ज्यादा नहीं है, उसके जरिए सारे देन अदा नहीं हो सकते, तो फिर याद रखो पहले देने सेहत अदा किए जाएंगे। अगर देने सेहत सारे अदा हो गए और कुछ माल बच गया तो फिर वो देने मरज वालों को देंगे, और अगर देने सेहत के अंदर ही सारा माल खत्म हो गया तो फिर देने मरज वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा। मालूम हुआ देने सेहत मुकद्दम है देने मरज पर। अब देने सेहत किसे कहते हैं और देने मरज किसे कहते हैं, याद रखो देने सेहत वो देन है जिसका हालत सेहत के अंदर कोई शख्स इकरार कर ले, या इसी तरह वो देन जिसका सबब सबको पता है कि इस वजह से इस पर ये देन आया है, या इसी तरह वो देन जिस पर गवाह मौजूद हैं, ये सब देने सेहत हैं। सेहत की हालत में एक शख्स इकरार कर लेता है कि मसलन मैंने फलां आदमी के 5 लाख रुपए देने हैं, कोई वजह जिक्र करे या ना करे, लेकिन बहरहाल इसने सेहत की हालत में एक शख्स के लिए पैसों का इकरार किया तो ये इसके जिम्मे देन हो गया और ये देने सेहत है क्योंकि इसने सेहत की हालत में इकरार किया है। या इसी तरह कोई ऐसा देन है जिसका सबब सबको पता है, मसलन जैद ने बकर से गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी के 10 लाख रुपए अब जैद के जिम्मा हैं। तो देखो ये ऐसा देन है जैद के जिम्मे जिसका सबब सबको पता है कि गाड़ी खरीदने की वजह से ये पैसे इस पर वाजिब हैं। और इसी तरह एक वो देन है जिस पर गवाह मौजूद हैं। याद रखो ये सब देन सेहत में हैं। जिसका इकरार सेहत में करे वो भी देन सेहत, जिसका सबब सबको पता हो वो भी देन सेहत, और जिस पर गवाह मौजूद हो वो भी देन सेहत। जबकि देन मरज वो है जिस पर गवाह भी मौजूद नहीं और जिसका सबब भी पता नहीं और वो हालत मरजुल मौत में इंसान किसी के बारे में इकरार कर ले। मरजुल मौत, एक शख्स बहुत ज्यादा बीमार हो गया और बिस्तर से लग गया, अब लोगों को नजर आ रहा है कि अब इसका बचना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, तो याद रखो ये दैन मरज है भाई। और इस दैन मरज के अंदर अगर ये शख्स इकरार करता है कि मैंने फुलां के इतने लाख रुपए देने हैं तो ये दैन मरज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दैन मरज कहलाएगा। और ये भी याद रखना कि मरजुल मौत के अंदर एक शख्स गिरफ्तार है और इसके अंदर वो एक दूसरे शख्स से गाड़ी खरीद रहा है या कोई चीज खरीद रहा है और ये तो सबको अब नजर आ रहा है कि ये चीज खरीदने की वजह से अब इस पर दैन आ गया है। तो मरजुल मौत के अंदर किसी के साथ बैअ की और उसकी वजह से उस मरने वाले पर दैन आ गया, तो याद रखो ये दैन मरज नहीं है, ये दैन सेहत है। क्योंकि दैन सेहत मैंने क्या कहा था, जिसका सेहत की हालत में इकरार किया हो या वो दैन जिसके सबब का सबको पता हो जी। तो देखो इसके भी सबब का सबको पता है, या इसी तरह ऐसा दैन जिस पर गवाह मौजूद हैं, तो ये सब दैन सेहत के अंदर शुमार होंगे। मसलन मरजुल मौत के अंदर मरने वाला कहता है कि भाई मैंने फला आदमी के 10 लाख रुपए देने हैं और वो फुला आदमी भी कहता है हां इसने मेरे 10 लाख देने हैं और 2 गवाह भी मेरे पास मौजूद हैं, तो ये अब इकरार किस वक्त कर रहा है? मरजुल मौत में। लेकिन ये ऐसा देन और कर्जा है जिस पर गवाह भी मौजूद हैं, तो ये भी देन सेहत ही में शुमार होगा। तवज्जो है। तो देन मरज सिर्फ वो देन है जिसका इकरार इसने मरजुल मौत में किया है और इस पर गवाह वगैरह कोई मौजूद नहीं, तो सिर्फ यह है देने मरज। तवज्जो है। तो लिहाजा माले वरासत में से सबसे पहले देने सेहत को अदा किया जाता है और अगर कुछ माल बच जाए उसके बाद देने मरज को अदा करते हैं। तो लिहाजा यहां पर भी एक आका ने अपने गुलाम का निकाह करवाया है और वो गुलाम पहले से ही मदयून है, उस पर बहुत से कर्जे हैं, तो अब औरत का महर भी इसको देना पड़ेगा, तो क्या आका निकाह करवा सकता है? क्या आका के लिए ये जायज है? भाई ये तो और कर्जखाहों के हक को बातिल कर रहा है। मसलन इस गुलाम के जरिए तो बाकी कर्जखाहों के पैसे ही सारे अदा नहीं हो रहे, अब औरत भी बीच में शामिल हो जाएगी, उसने भी अपना महर वसूल करना है, तो सबके हिस्सों में उसी के बकदर कमी आ जाएगी, तो क्या ये जायज है? तो मतन में आपने पढ़ लिया कि ये जायज है, आका अपने मदयून गुलाम का निकाह करवा सकता है। लेकिन बतलाया कि यह औरत अपने महरे मिसल के बकदर मिकदार में और कर्जखाहों के साथ बराबर होगी, यानी महरे मिसल तक जो महर हुआ वो देने सेहत शुमार होगा और महरे मिसल से अगर जायद मिकदार हुई वो देने मरज शुमार होगा। लिहाजा इस गुलाम को बेचने के बाद अगर देने सेहत और देने मरज सारे अदा हो सकते हैं फिर तो सारे अदा करेंगे, और अगर सारे अदा नहीं हो सकते तो फिर बाकी कर्जखाहों के साथ महरे मिसल तक जो औरत का महर बनता है वो सारे अदा किए जाएंगे, और अगर कुछ माल बच गया फिर वो जो महरे मिसल से जायद महर था उसकी वजह से औरत को वो अदा करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम ये कि आका अपने मदयून गुलाम का निकाह करवा सकता है और उस पर जो माले महर वाजिब होगा अगर वो महरे मिसल तक है तो औरत और कर्जखाहों के साथ उसमें बराबर है भाई, और अगर वो महरे मिसल से जायद है तो वो जो जायद मिकदार है वो देने मरज की तरह है, वो बाकी कर्जे अदा करने के बाद अगर माल बच जाता है तो फिर उसके बाद उसकी अदायगी की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह मा ना हो, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के इस कौल का माना यह है, इदा कान निकाह हो बी महरिल मिसली, कि जब ये निकाह महरे मिसल के साथ हो, वह वजह हो और वजह इसकी ये है, ये जो इन्होंने कहा कि निकाह जायज है, निकाह भाई यहां इश्काल होता है ना कि पहले मसलन पांच कर्ज खा हैं तो ये जित गुलाम को बेचने के बाद जो माल वसूल होगा वो पांच अफराद में तकसीम होगा, लेकिन जब औरत के साथ निकाह करवा दिया तो औरत का भी महरब अदा करना है तो अब वही माल छह अफराद में तकसीम होगा। तो बज़ाहिर दिलों में बदगुमानी आती है कि आका कर्ज़ाहों का हक बातिल करना चाहता है, आका कर्ज़ाहों का हक बातिल करना चाहता है, क्योंकि वही माल अब जब छह अफराद को मिलेगा तो हर एक के हिस्से में कमी आ गई भाई। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई देखिए कि आका अपने गुलाम और बांदी का मालिक होता है, और जब अपने गुलाम और बांदी का मालिक है तो आका को हक है वो इनका निकाह करवा सकता है, इसलिए क्योंकि निकाह के अंदर इनकी पाकदामनी है और हलाकत से इनकी हिफाजत है। जैसे जो भी शख्स जिस चीज का मालिक होता है तो हर शख्स अपनी चीज का ख्याल रखता है, अच्छे तरीके से उसको रखता है, तो इसी तरह ये आका जो है, ये गुलाम और बांदी जो है इसके ममलूक हैं, लिहाजा ये इनका निकाह करवा सकता है ताकि कहीं ऐसा ना हो ये जिना में मुब्तला ना हो जाएं और हलाकत तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वरना तो फिर इन पर हद जारी होगी और हद की वजह से इनकी जान भी जा सकती है या कोई और नुकसान भी पहुंच सकता है। तो लिहाजा हलाकत से अपनी चीज को बचाना हर मालिक का हक है, तो इस आका का भी यह हक है, यह अपने गुलाम या बांदी का निकाह करवा सकता है, यह हक उसको शरीयत ने दिया है। तो लिहाजा इसके लिए अपने गुलाम या बांदी का निकाह जब जायज है तो यह अपने मदयून गुलाम का भी निकाह करवा सकता है, अगरचे इसकी वजह से दूसरे कर्जखाहों का हक बातिल हो रहा है, लेकिन वह हक जिमनन बातिल हो रहा है। असल मकसूद तो यहां गुलाम को हलाकत से बचाना है, और जिमनन अगर दूसरों का हक बातिल हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं की जाएगी। अगर यहां कसदन दूसरों का हक बातिल होता तो फिर इस सूरत में इसकी इजाजत न होती, लेकिन दूसरों का हक तो जिमनन बातिल हो रहा है, असल में तो आका अपने गुलाम को हलाकत से बचाना चाहता है, लिहाजा यह जायज होगा। सूरत समझ में आ गई। वजहू, और वजह इसकी यह है कि अन्ना सबबा विलायतिल मौला, के आका की विलायत का सबब जो है, आका को जो विलायत है यानी आका को जो विलायत निकाह हासिल है कि ये अपने गुलाम या बांदी का निकाह करवा सकता है, तो आका की इस विलायत निकाह का सबब जो है मिल्कुहुर रकबता, वो इस आका का इस गुलाम की जात का मालिक होना है। अलामा नज़कुरुहु, उस वजह से जो हम जिक्र करेंगे आगे चंद सत्रों के बाद साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि आका को शरीयत ने इजाजत दी है वो अपने गुलाम या बांदी का निकाह करवा सकता है ताकि उनको हलाकत से बचा ले, ताकि कहीं वो जिना ना करें और उसकी वजह से उन पर हद जारी होगी और हद की वजह से तो इनकी जान भी जा सकती है या आज़ा भी जाया हो सकते हैं, तो लिहाजा इसको शरीयत ने इजाजत दी है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, वजहू, और वजह इसकी यह है कि नसब अबा विलायतिल मौला, के आका को जो ये निकाह की विलायत हासिल है इसका सबब जो है मिल्कुहुर रकबता, वो आका का मालिक होना है इस गुलाम की जात का। अलामा नज़कुरुहु, उस वजह से जो हम आगे जिक्र करेंगे। वन निकाह ला युलाकी हक्कल गुरमा इबिल इबताल मकसूदन, और निकाह ने मुलाकात नहीं की कर्ज खाहों के हक के साथ। भाई देखो ना, और कर्ज खाहों का भी तो हक है इस गुलाम पर, और साथ निकाह आ गया यानी महर भी आ गया, तवज्जो है। तो यहां पर इस निकाह की वजह से और कर्ज खाहों के हिस्सों में कमी आ रही है, उनका हक बातिल हो रहा है, लेकिन उनका हक बातिल होना यह कसदन नहीं है बल्कि जिमनन है भाई। तो कहते हैं वन निकाह ला युलाकी हक्कल गुरमाई, और इस निकाह ने मुलाकात नहीं की कर्ज खाहों के हक के साथ। बिल इबताल मकसूदन, इस तौर पर कि ये उनको बातिल कर रहा हो मकसूदन, बेतबार मकसूद होने के, यानी उनका इबताल ही मकसूद हो, यहां ऐसा नहीं है बल्कि यहां अपनी चीज को हलाकत से बचाना असल मकसूद है, अपनी चीज को हलाकत से बचाना असल मकसूद है, और कर्साहों का जो हक बातिल हो रहा है वो कसदन नहीं है बल्कि जिमनन है, लिहाजा वो जायज है। तो कहते हैं वह निकाह हुला युला के हक अल गुरमा इबिल इबताल मकसूदन, और निकाह ने कर्साहों के हक से मुलाकात नहीं की मकसूदन उनको बातिल करते हुए बल्कि जिमनन उनको बातिल करते हुए उससे मुलाकात की है। इल्ला अन्नहु इदा सहन निकाह हो, मगर यह कि जब निकाह सही हो गया वजब दैनु बी सबब ला मरद दलहू, तो दैन वाजिब हो गया यानी महर वाजिब हो गया बी सबब एक ऐसे सबब की वजह से ला मरद दलहू जिसके लिए लौटना नहीं है, यानी ऐसा सबब आ गया जो लौट नहीं सकता क्योंकि निकाह के साथ माल जरूर आता है, निकाह की सूरत में महर जरूर देना पड़ता है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु इदा सहन निकाह, मगर यह कि जब निकाह सही हो गया वजब दैन बि सबब ला मरद लहू, तो यह दैन वाजिब हो गया एक ऐसे सबब की वजह से ला मरद लहू जिसके लिए वापसी नहीं है जो लौट नहीं सकता। फशा बहा दैन अल इस्तेहला की, तो यह दैन इस्तेहलाक के मुशाबे हो गया, यह इसी तरह है जैसे दैन इस्तेहलाक भाई हलाका या हलीकू के माने हलाक होना, और इस्तहलका या इस्तहलीकू के माने हैं हलाक करना। मसलन गुलाम ने किसी का कोई माल हलाक कर दिया, यह गुलाम जो मकरूज है जिस पर पहले से ही कर्जे हैं, यह गुलाम अगर किसी की कोई चीज तोड़ देता है या जला देता है तो देखो यहां गुलाम की तरफ से इस्तेहलाक पाया गया, इसने दूसरे की चीज जाया कर दी है, तो इस चीज के पैसे भी अब गुलाम को देने पड़ेंगे। तवज्जो है, अगर वो मिसलियात में से है तो उसका मिसल आएगा, और अगर ज़वातुल क़ियम में से है तो उसकी कीमत देना पड़ेगी। तो देखो ये गुलाम पर मजीद दैन आ रहा है, गुलाम पहले से मदयून है और मजीद दैन आ रहा है, किस वजह से? इस्तेहलाक की वजह से। तो बिल इत्तेफाक गुलाम चाहे मदयून ही क्यों ना हो, अगर वो किसी की चीज को नुकसान पहुंचाएगा तो वो भी इसके जिम्मे दैन हो जाएगा जी। तो जैसे ये दैन इस्तेहलाक मदयून गुलाम पर भी आ जाता है, इसी तरह ये निकाह की वजह से जो महर है ये दैन भी गुलाम पर आ जाएगा। तो ये महर भी किसके मुशाबे हो गया? देने इस्तेहलाक के, और देने इस्तेहलाक तो मदयून गुलाम पर भी आ जाता है, तो ये महर भी गुलाम पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फशाबह दैन अल इस्तेहलाक की, तो ये महर मुशाबे हो गया देने इस्तेहलाक के। वसारा कल मरीज इल मदयूनी ईदा तज़व्वज इम्रअतन फबी महर मिस्लिहा उस्वतुन लिल गुरमाई। वसार कल मरीज इल मदयूनी, और ये उस मरीज की तरह हो गया जो मदयून है मकरूज है। इदा तज़व्वज इम्रअतन, जब उसने निकाह कर लिया एक औरत से। सूरत मसला ये, एक शख्स है और वो मरजुल मौत में गिरफ्तार है और उस पर बहुत सारे कर्जे हैं भाई, और इसी मरजुल मौत की हालत में वो नया निकाह कर लेता है, वो नया निकाह कर लेता है। अब देखो औरत का महर इसके ऊपर आएगा, लेकिन शरअन इसके लिए ये जायज है, शरअन उसके लिए जायज है, वो निकाह कर सकता है भाई। और फिर ये औरत जिसके साथ इसने निकाह किया है ये अपने महरे मिसल के बराबर और कर्साहों के साथ शरीक हो जाएगी, लेकिन अगर महरे मिसल से जायद हुआ वो दैन मरज शुमार होगा। तवज्जो है, अगर इस औरत से जो निकाह किया है वो महरे मिसल में किया है फिर तो ये और कर्सखाहों के साथ बराबर है। इस शख्स के मरने के बाद जितने कर्सखा हैं उनको उनके हिस्से के बकदर माले वरासत में से अदायगी की जाएगी, बशमूल उस औरत के जिसके साथ इसने निकाह किया था, तो बशमूल उस औरत के वो भी इनके साथ शामिल होगी अपना दैन वसूल करने में, ये जो महर उसने वसूल करना है। हां, अगर इस औरत का महर महरे मिसल से इसने जायद मुकर्रर किया था तो फिर यह दैने मरज शुमार होगा। तो कहते हैं वसार कल मरीज इल मदयूनी ईजा तज़व्वज इम्रअतन, और ये इसी तरह हो गया जैसे कि एक मकरूज मरीज जो है यानी जो मरजुल मौत में मुबतला है, इज़ा तज़व्वज इम्रअतन जब वो किसी औरत से निकाह कर ले, फबी महरि मिस्लिहा उस्वतुन लिलगुरमाई, तो औरत अपने महरे मिसल के बकदर वो बराबर होगी लिलगुरमाई कर्ज़खाहों के, अपने महर मिसल की मकदार के बकदर वो और कर्ज खाहों के साथ बराबर होगी भाई कर्ज की वसूली में। वह मंजौज अमतहू फलैसा अलैही अन युबव्वी अहा बैत अज़्ज़ौजी वलाकिन्नहा तख़दिमुल मौला वयुक़ालु लिज़्ज़ौजी मता ज़फ़िरत बिहा वतिअतहा लिअन्न हक़्क़ल मौला फ़िल इस्तिख़दामि बाक़ीन वत्तबवीअतु इब्ताल लहू। भाई बव्वा युबव्वी उत्तबवी अतन का माना है ठिकाना देना, किसी जगह में किसी को ठहराना, इसको कहते हैं तबवी। अब भाई याद रखो मसला यह है कि आका अपनी बांदी का निकाह करवा देता है तो क्या आका पर लाजिम है कि इस बांदी को खावंद के घर भेज दे कि वहीं अपने खावंद के पास बांदी रहे? कहते हैं नहीं, आका जो है इस बांदी की जात का मालिक है तो आका का हक आला है और जो खावंद है वो सिर्फ बांदी के मनाफिया का मालिक है, लिहाजा उसका हक अदना है। तो खावंद की वजह से बांदी के जिम्मे जो आका की खिदमत का हक है वो बातिल नहीं होगा और आका पर लाजिम नहीं है कि बांदी खावंद के पास ठहराए बल्कि बांदी से खिदमत लेता रहे और खावंद जो है उसको जब मौका मिल जाए उस वक्त वो सोहबत कर ले। तो आका पर लाजिम नहीं है कि बांदी को खावंद के पास ठिकाना दे और वहीं रहने दे, ये उस पर लाजिम नहीं है। तो कहते हैं वह मंजव वजह अमाता हूं और जिसने अपनी बांदी का निकाह करवाया फलई साले ही अयु बव्वी आहा बैत जौजी, तो आका पर यह लाजिम नहीं है कि वो उस बांदी को ठहराए बैत जौजी खावंद के घर में। बैत वैसे कमरे को कहते हैं, मुराद घर है। तो आका पर यह लाजिम नहीं है अयु बव्वी आहा बैत जौजी कि इस बांदी को खावंद के घर में ठिकाना दे यानी वहां पर इसको रहने दे। वला कि नहा तख्दिमुल मौला, लेकिन यह बांदी जो है अपने आका की खिदमत करती रहेगी। व युकालु लिज़्ज़ौजी, और खावंद से कहा जाएगा मता ज़फ़िरत बिहा वतिअतहा कि जब आप इस पर कामयाब हो जाए यानी जब आप इसको पा लें वतिअतहा तो तब आप इससे सोहबत कर लें। लिअन्न हक़्क़ल मौला फ़िल इस्तिख़दामि बाक़ीन, इसलिए क्योंकि आका का हक खिदमत तलब करने में अभी भी बाकी है, वो इस बांदी से खिदमत तलब कर सकता है। वत्तबवी अतु इब्तालुन लहू, और ठिकाना देना ये तो उस हक को बातिल करना होगा। यानी अगर हम ये कहें कि आका पर लाजिम है कि अब इस बांदी को अपने खावंद के घर उसके पास रहने दे, ये तो फिर हम आका के हक को बातिल कर रहे हैं, हालांकि आका का हक आला है क्योंकि आका बांदी की पूरी जात का मालिक है और खावन का हक अदना है क्योंकि वो तो सिर्फ बांदी के मनाफिया का मालिक है। तो अदना हक के लिए आला हक को बातिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा आका पर जरूरी नहीं कि उसको ठिकाना दे खावन के पास। तो कहते हैं लिअन्न हक़्क़ल मौला फ़िल इस्तिख़दामि बाक़ीन, इसलिए क्योंकि आका का हक जो है खिदमत लेने के अंदर बाकी है। वत्तबवीअतु इब्तालुन लहू, और बांदी को खावंद के पास ठिकाना देना इब्तालुन लहू ये तो आका के हक को बातिल करना है, लिहाजा इसकी इजाजत नहीं होगी। फ़इन बव्वअहा मअहू बैतन, फिर याद रखो अगर आका ने बांदी को खावंद के पास ठहरने की इजाजत दे दी कि बस मेरी खिदमत की जरूरत नहीं है, बस अब अपने खावंद के पास रहा करो, तो इस सूरत में खावंद पर नफका भी लाजिम होगा और बांदी को रिहाइश देना भी लाजिम है। भाई जैसे निकाह की वजह से खावंद पर लाजिम हो जाता है कि बीवी को वो खर्चा भी देगा और उसको रिहाइश भी देगा, तो जब यहां पर भी आका ने अपना हक छोड़ दिया और बांदी को खावंद के पास रहने दिया तो अब वो जो नफका और रिहाइश है खावंद के जिम्मे है, वो उसको देना पड़ेगी। और जब तक आका उससे खिदमत ले रहा है तब तक खावंद के जिम्मे ना नफका है और ना रिहाइश है। भाई तो कहते हैं फइन बव्वअहा मअहू बैतन, अगर आका ने उस बांदी को ठहरा दिया खावंद के साथ किसी घर में फलाहन नफकतु वस्सुकना, तो उस बांदी के लिए नफका भी होगा वस्सुकना और रिहाइश भी होगी यानी यह खावंद के जिम्मे होगी। भाई वह इल्ला फला, और अगर ऐसा ना हो यानी खावंद के पास बांदी को नहीं ठहराया तो फिर बांदी के लिए नफका और सुकना भी नहीं होगा। वह इल्ला, भाई याद रखना ये इल्ला से पहले वह आ जाए तो फिर ये हरफे इस्तिस्ना नहीं है, ये दरअसल है इन ला, और फिर नून को भी लाम करके लाम में इदगाम कर दिया गया तो वह इल्ला हुआ। तो कहते हैं वह इल्ला फला, और अगर ऐसा ना हो यानी आका बांदी को खावन के पास न ठहराए फला, तो फिर उसके लिए नफका और सुकना भी नहीं होगा यानी खावंद पर। लिअन्ना नफकता तुकाबिलुल इहतिबासा, इहतिबास का माना है रोकना। कहते हैं लिअन्ना नफकता तुकाबिलुल इहतिबासा, इसलिए क्योंकि नफका इहतिबास के मुकाबिल है कि औरत अपने आप को खावंद के लिए उसके घर में रोके रखे। औरत खावंद के लिए घर में अपने आप को रोके रखे तो उसकी वजह से खावंद पर औरत का नफका लाजिम होता है। तो यहां पर तो बांदी आका की खिदमत कर रही है, खावंद के पास उस आका ने उसको ठिकाना दिया ही नहीं है तो इहतिबास भी नहीं। बांदी ने अपनी जात को खावंद के लिए रोका नहीं, इहतिबास नहीं पाया गया, और जब इहतिबास नहीं है तो खावंद के जिम्मे उसका नफका भी नहीं है। तो कहते हैं लिअन्ना नफकता तुकाबिलुल इहतिबासा, इसलिए क्योंकि नफका जो है इहतिबास के मुकाबिल है यानी उसके मुकाबले में है। इहतिबास होगा तो नफका भी है, इहतिबास नहीं तो नफका भी नहीं। वलौ बव्वअहा बैतन सुम्मा बदा लहू अन यस्तख़दिमहा लहू ज़ालिका। सूरत मसला ये कि आका ने बांदी को इजाजत दे दी कि रहो अपने खावन के पास ही रहो, यानी अपना खिदमत लेने का हक छोड़ दिया आका ने, बांदी अपने खावंद के साथ रहने लगी। फिर बाद में आका को खिदमत की जरूरत हुई तो आका ने फिर उसे कहा कि तुम मेरी खिदमत किया करो, तो क्या आका जो पहले अपना हक छोड़ चुका था क्या उसको अब हक है कि उससे फिर खिदमत ले? कहते हैं हां भाई, जैसे निकाह की वजह से आका का हक साकित नहीं हुआ था, इसी तरह अगर आका उसको ठहरने की इजाजत दे दे तो इस इजाजत देने से भी आका का कोई हक साकित नहीं हो गया, वो फिर भी अपना हक वसूल कर सकता है। तो कहते हैं वलौ बव्वअहा बैतन, और अगर आका ने उसको ठिकाना दिया घर में यानी खावंद के, सुम्मा बदा लहू अन यस्तख़दिमहा, फिर आका की ये राय बनी। बदा लहू का माना है राय बनना, सुम्मा बदा लहू, फिर आका की यह राय बन गई अन यस्तख़दिमहा कि वो इस बांदी से खिदमत ले। लहू ज़ालिका, तो आका को यह हक है। लिअन्नल हक बाकिन लिबकाइल मिल्की, इसलिए क्योंकि आका का हक अभी भी बाकी है। लिबकाइल मिल्की, क्योंकि उसकी मिल्कियत इस बांदी में बाकी है। फला यस्कुतु बित्तबवीअति, तो ठिकाना देने से आका का हक साकित नहीं होगा। कमा ला यस्कुतु बिन निकाही, जैसे कि निकाह की वजह से आका का हक साकित नहीं होता। आगे देखिए, قال رضي الله تعالى عنه ذكر تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما। قال رضي الله تعالى عنه, इससे मुराद साहिब हिदाया है। साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जामे सगीर में यह मसला जिक्र फरमाया है। ये जो पिछले एक दो मसले गुजरे हैं कि आका अपने मदयून गुलाम का निकाह करवाता है या आका अपनी बांदी का निकाह करवाता है, लेकिन इन दोनों मसलों में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने गुलाम या बांदी की रजामंदी को जिक्र नहीं किया जी। और कहते हैं ये हमारे मजहब की ताईद करता है कि हमारा मजहब यह है कि आका को गुलाम और बांदी पर विलायत इजबार हासिल है। जैसे वली को सगीर और सगीरा पर विलायत इजबार हासिल है कि बाप दादा जहां चाहें इनका निकाह करवा सकते हैं, इसी तरह आका को भी गुलाम और बांदी पर विलायत इजबार हासिल है। जहां चाहे आका इनका निकाह करवा सकता है, चाहे ये राजी हो चाहे राजी ना हो। भाई तो कहते हैं قال رضي الله عنه, साहिब हिदाया फरमाते हैं, ذكر تزويج المولى عبده وأمته, कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जामे सगीर में जिक्र फरमाया है आका का अपने गुलाम और बांदी का निकाह करवाना। वलम यस्कुर रिजा हुमा, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने गुलाम और बांदी की रजामंदी को जिक्र नहीं फरमाया। वहादा यरजू इला मज़हबिना, और यह बात हमारे मजहब की तरफ लौटती है। हमारा मजहब यही है कि अन्नलिल मौला इजबार हुमा अलन निकाही, कि आका जो है गुलाम और बांदी को मजबूर कर सकता है निकाह पर। वइंदा शाफिई रहमहुल्लाहु ला इजबार फिल अब्दी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं गुलाम के अंदर इजबार नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आका गुलाम का जबरदस्ती निकाह नहीं करवा सकता। बल्कि गुलाम की मर्जी हो तो फिर ही निकाह करवा सकता है। हां, बांदी का आका जबरन निकाह करवा सकता है लेकिन गुलाम का जबरन निकाह नहीं करवा सकता। वाइंदा शाफिई रहमौला, इमाम शाफी रहमौला के नजदीक ला इजबार फिल अब्दी, गुलाम के अंदर इजबार नहीं है। वह हुआ रिवायत उन अबी हनीफता रहमौला, और यही एक रिवायत इमाम साहिब से भी है, वो भी फरमाते हैं आका गुलाम की मर्जी के बगैर उसका निकाह नहीं करवा सकता। कहते हैं लिअन्ना निकाह मिन खसाइसिल आदमीयति, इसलिए क्योंकि निकाह जो है आदमी होने की खसूसियात में से है, ये इंसान की खसूसियात में से है कि वो निकाह करता है, उसको शरीयत ने निकाह की इजाजत दी है। तो गुलाम को भी जो निकाह की इजाजत शरीयत ने दी है वो आदमी होने के एतबार से दी है, और आका जो इसका मालिक होता है वो माल होने के एतबार से है कि गुलाम को माल शुमार किया जाता है, उसकी खरीदो फरोख्त की जाती है। तो आका अपने गुलाम का मालिक है माल होने के एतबार से, और गुलाम को जो निकाह की इजाजत दी है शरीयत ने वो आदमी होने की हैसियत से दी है, तो आका इसका और एतबार से मालिक है, और इसको जो निकाह की इजाजत मिली है वो और एतबार से मिली है, लिहाजा आका उस पर जबर नहीं कर सकता। तो कहते हैं लिअन्न निकाह मिन खसाइसिल आदमीयति, इसलिए क्योंकि निकाह जो है आदमी होने की खसूसियात में से है। वल अब्दु दाखिलुन तहत मिल्किल मौला मिन हैसु इन्नहु मालुन, और गुलाम जो है वो तो आका की मिल्कियत के तहत दाखिल होता है इस हैसियत से कि गुलाम माल है। फला यमलिकु इनकाहहु, लिहाजा आका मालिक नहीं है कि इसका निकाह करवाए, यानी जबरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर, क्योंकि ये जो निकाह की इजाजत मिली है इसको, इस गुलाम को, वो आदमी होने की हैसियत से मिली है, और आदमी होने की हैसियत से तो आका इसका मालिक नहीं, वो इस पर जबर नहीं कर सकता। तो ये इमाम साहब की एक रिवायत है भाई। बिखिलाफ इल आमती, बखिलाफ बांदी के बांदी का निकाह आका जबरन करवा सकता है। कहते हैं बिखिलाफ इल अमती, बखिलाफ बांदी के, लिअन्नहु मालिकु मनाफिअ बुज़िहा, इसलिए क्योंकि आका इस बांदी के मनाफिअ बुज़िहा का मालिक है। बांदी के मनाफिअ बुज़िहा का मालिक आका है, जब वो खुद इसका मालिक है तो दूसरे को भी इसका मालिक बना सकता है, जिससे चाहे इस बांदी का निकाह करवा सकता है। फिर इस सूरत में आका के लिए यह बांदी हराम हो जाएगी और अपने खावंद के लिए हलाल हो जाएगी। तो कहते हैं बिखिलाफ इल अमती, बखिलाफ बांदी के, लिअन्नहु मालिकु मनाफिअ बुज़िहा, क्योंकि आका इस बांदी के मनाफिअ बुज़िहा का मालिक है। फयमलिकु तमलीकहा, तो आका इस बात का भी मालिक है तमलीकहा, कि दूसरे को इसका मालिक बना दे। वलना, हमारी दलील, हमारे नजदीक, ये तो एक रिवायत थी इमाम साहब की, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी यही मजहब है कि गुलाम का जबरन निकाह नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अहनाफ का मजहब क्या है कि गुलाम और बांदी दोनों पर आका को विलायत इजबार हासिल है, वो जहां चाहे इनका निकाह करवा सकता है इनकी मर्जी के बगैर भी। वलाना, हमारी दलील यह है कि अनल इनकाह इस्लाह मिल्की ही, कि निकाह करवाना यह अपनी मिल्कियत की इस्लाह है। भाई देखो, जो शख्स जिस चीज का मालिक होता है वह अपनी चीजों का ख्याल रखता है। आपकी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं भाई, आपका मोबाइल है आप उसका ख्याल रखते हैं। तो ये गुलाम और बांदी जिसके ममलूक हैं वो आका भी क्या चाहेगा, इनकी इस्लाह चाहेगा। तो वो इनका निकाह करवाता है इनकी इस्लाह की नीयत से, ताकि ये जिना से महफूज हो जाएं। वरना तो अगर ये जिना में वाकई हो गए फिर तो इन पर हद जारी होगी, और हद की वजह से तो जान जाने का भी खतरा है। तो आका को इसलिए शरीयत ने निकाह का हक दिया है ताकि ये अपने गुलाम और बांदी को हलाकत से बचा सके। वलना, हमारी दलील यह है कि नल इनकाह इस्लाह मिल्की ही, के निकाह करवाना ये अपनी मिल्कियत की इस्लाह करना है। लिअन्न फीही तहसीनहु अनिज़्ज़िना, इसलिए क्योंकि निकाह करवाने में अपने गुलाम को महफूज करना है अनिज़्ज़िना, उस जिना से, अल्लज़ी हुआ सबबुल हलाकी वन नुकसानी, जो हलाकत और नुकसान का सबब है, उसकी वजह से हद जारी होगी और फिर गुलाम की हलाकत हो सकती है या कोई और नुकसान हो सकता है, कोई आजा वगैरह शल हो सकते हैं उसके। भाई तर्जमा समझ में आया? तो कहते हैं लिअन्ना फीहि तहसीनहु अनि ज़िना अल्लज़ी हुवा सबबुल हलाकी वन नुकसानी, इसलिए क्योंकि निकाह करवाने में इस गुलाम को महफूज बनाना है उस जिना से जो कि हलाकत और नुकसान का सबब है। फयमलिकुहु एतबारम बिल अमति, लिहाजा आका इस गुलाम के निकाह का भी मालिक होगा एतबारम बिल अमति, बांदी पर कियास करते हुए। बांदी में तो बिल इतफाक आका को उस पर विलायत इजबार हासिल है, तो गुलाम को भी उसी पर कयास करते हुए गुलाम पर भी आका को विलायत इजबार हासिल होगी। तो यह माना है फयम लिकुहू एतबारम बिल अमति, लिहाजा आका इस गुलाम के निकाह करवाने का भी मालिक होगा बांदी पर कयास करते हुए। बिखिलाफ अल मुकातबी वल मुकातबती, हां बखिलाफ मुकातब और मुकातबा के, यानी वो गुलाम या बांदी जिनसे आका ने अकदे किताबत कर लिया है, याद रखो वो निकाह करना चाहते हैं तो आका की इजाजत वहां भी जरूरी है, आका की इजाजत के बगैर उनके लिए भी निकाह जायज नहीं। लेकिन मुकातब और मुकातबा के अंदर आका उनकी मर्जी के बगैर निकाह नहीं करवा सकता, बल्कि उनकी रजामंदी भी जरूरी है। किसमें? मुकातब और मुकातबा में। वजह यह कि मैंने आपको बतलाया था कि अकदे किताबत करते ही मुकातब जो है वो आजाद आदमी की तरह हो जाता है, अब आका उससे जबरन खिदमत नहीं ले सकता, वो जाएगा और जाकर पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तो ये मुकातब और मुकातबा जो हैं इनका हुक्म आजाद मर्दों और औरतों वाला हो गया, लिहाजा आजाद मर्द और औरत का कोई जबरन निकाह नहीं करवा सकता, तो इनका भी निकाह आका जबरन इनकी मर्जी के बगैर नहीं करवा सकता। अलबत्ता ये याद रखना इजाजत इनके लिए भी जरूरी है, ये भी अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकते ये मुकातब और मुकातबा। तो आका इनकी मर्जी से तो इनका निकाह करवा सकता है, लेकिन इनकी मर्जी के खिलाफ इनका निकाह नहीं करवा सकता। तो कहते हैं भी खिलाफ इल मुकातबी वल मुकातबती लिअन्नहुमल तहका, इसलिए क्योंकि ये दोनों मिल गए हैं बिल अहरारी आजाद लोगों के साथ तसर्रुफन तसर्रुफ के एतबार से, यानी जैसे आजाद आदमी को तसर्रुफात का इख्तियार होता है, मुकातब और मुकातबा को भी तसर्रुफ का इख्तियार होता है। لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا, इसलिए क्योंकि ये दोनों तसर्रुफ के एतबार से आजाद लोगों के साथ मिल गए हैं। فيشترط رضاهما, लिहाजा इन दोनों की रजामंदी भी शर्त होगी, इनकी रजामंदी से ही आका इनका निकाह करवाएगा। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।